कल से गणेश चतुर्थी, गणेश पूजन प्रारंभ हुआ, उसके बारे में आप लोगों ने कुछ सुना। लघु वासुदेव मननम, आत्मा में कर्तापना और कारितापना दोनों ही लागू नहीं होते। कर्तापन का निषेध किया, अब कारितापन, आत्मा करवाता है। हालांकि आत्मा इस हिंदी में तो स्त्रीलिंग में बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में पुल्लिंग होता है। आत्मा आत्मानु आत्मान ऐसा रूप चलता है इसका, तो जैसा भी आप समझ सकते हैं। तो आत्मा न करता है न कराता है। शंका कर रहे हैं कि जो लोग ऐसा बोलते हैं हिंदी में कि ननु अहम देवालयम कारयामी, अहम तटाकम कारयामी इत्यादि व्यवहारात आत्मा कार इता भवतु इति चेत, अहम देवालयम कारयामि, मैं देवालय बनाता हूं, मंदिर बनवाता हूं, तटाकम मतलब तालाब, मैं तालाब बनवाता हूं, ये जो व्यवहार है इस क्रिया में जो मैं का संबंध है, देवालय आदि बनवाने का जो काम है, मैं बनवाता हूं, ये मैं जो आत्मा है इसके साथ ही संबंध हुआ। बनाने वाला तो नहीं, अभी यहां क्या मैं बनाता हूं नहीं है, मैं बनवाता हूं। चलो मंदिर बनाने वाला तो मिस्त्री कारीगर हुआ, लेकिन जो बनवाने वाला मालिक है वो तो बोलता है कि मैं बनवा रहा हूं। तो वो जो मैं बोल रहा है उस आत्मा को यदि कारिता, इसको बोलते हैं प्रयोजक, प्रेरक, प्रेरिता, करवाता हूं मैं। मैं कुछ एक आदमी ने कहा कि दुनिया में लोग नाच के कमाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दूसरे को नचा के कमाते हैं। अब किस में आते हैं हम लोग देख लेना। तो बनाने वाला सोचता है कि मैं बना रहा हूं, बनवाने वाला कहता है कि मैं बनवा रहा हूं। लेकिन यहां पर कारिता का भी संबंध आत्मा के साथ है, ऐसा निषेध किया कि ये नहीं हो सकता। नौ, क्योंकि आत्मनो निर्विकारत्वात्, यदि बनवाने का अभिमान आत्मा में आ जाए तो ये अपने आप में एक विकार है और आत्मा स्वयं निर्विकार है, इसलिए इसमें कारितृत्व न उपपद्यते। जैसे आत्मा में कर्तापन सिद्ध नहीं होता, उसी प्रकार से कारितापन भी सिद्ध नहीं हो सकता निर्विकार होने के कारण। आत्मनि कारितृत्व भातीति चेत, लेकिन अभी तो कहा न कि मैं बनवाता हूं, तो ये मैं जो है आत्मा, इसमें बनवाने का जो भान है ये तो हो ही रहा है, फिर आप कैसे निषेध कर रहे हैं कि आत्मा करवाता नहीं है। कहते हैं सुनो, जपा कुसुम निष्ठम लोहित्यम स्फटिक इव, अड़ूसे का फूल, उसके जो भ्रम होता है स्फटिक में, जो लालिमा दिखती है वो पुष्प की होती है, लेकिन लोग कहते क्या है, देखो स्फटिक लाल हो गया। इसी प्रकार से राग द्वेष आदि निष्ठम कारितृत्वम आत्मनि भ्रांत्या आरोप्यत इति ज्ञेयम्। राग और द्वेष का जो संबंध है, जो उसका धर्म है, वह हमें आत्मा में भ्रम के कारण दिखाई देता है। जैसे जपा कुसुम का भ्रम स्फटिक में होता है, उसी प्रकार से राग द्वेष आदि का जो धर्म है उसका भ्रम हमें आत्मा में होता है। ये तो प्रसिद्ध दृष्टांत है जपा कुसुम का। यदि आत्मा में कारिता स्वाभाविक मानेंगे तो शुरू से जो बात आ रही उसी को दोहरा दिया यहां भी। जैसे दुख को स्वाभाविक नहीं मान सकते, क्यों, स्वाभाविक मतलब स्वरूप, और स्वरूप का कोई नाश करना चाहेगा, नहीं हो सकता। इसी प्रकार से यदि आत्मा में कारिता भी स्वाभाविक मानेंगे तो इसको कोई नाश करने के लिए प्रयास करेगा ही नहीं। आत्मा जैसे कर्ता नहीं है, आत्मा में जैसे दुख नहीं है, वैसे आत्मा में कारयिता भी नहीं है। भोक्ता पिनाहम भोजयिता पिनाहम कहा है। आगे जाकर के जैसा कहेंगे आत्मा के सन्निधि में ये सारे क्रियाकलाप होते हैं। आत्मा की तो बात छोड़िए, हम लोगों के शरीर में जिन इंद्रियों के द्वारा विषयों का उपभोग करते हैं उन इंद्रियों के साथ भी जो देवता हमारे ऊपर अनुग्रह करते हैं, जिनके द्वारा हमें सामर्थ्य मिलती है देखने के, सुनने के, बोलने के, देवता भी हमारे उस सुख दुख से लिपायमान नहीं होते। तो आत्मा तो देवता से भी ऊपर है, तो उसका तो फिर कहना ही क्या। आगे इसका निराकरण होने वाला है। इसलिए आत्मा में कार्यता स्वाभाविक नहीं माना जा सकता, नहीं तो कोई भी स्वरूप को नष्ट करने के लिए प्रयास भला करेगा क्यों। स्वभावस्य स्वरूपत्वात् कथंचित तस्य नाशे स्वरूप नाश एव स्यात्। आत्मनोपि कार्यित्रित्वं यदि स्यात्, यदि आत्मा में भी कार्यता मानेंगे तो श्रुति का जो प्रमाण है, उदाहरण जो दिया गया है, मांडुक्य उपनिषद का यहां पर उदाहरण दिया, आत्मा असंगो निष्क्रियो अकारयिता इति। आत्मा असंग है, निष्क्रिय है, अकारयिता इति प्रतिपादिका, इसके प्रतिपादन करने वाले जो श्रुति है, अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय। मांडुक उपनिषद आप लोग याद किए होंगे, इसमें ये आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वो ये है, अदृष्टम, जो दृश्य का विषय नहीं बनता, अव्यवहार, जब किसी भी व्यवहार में वह नहीं आता, व्यवहार के योग्य ही नहीं। और वास्तव में जब ज्ञान होने लगता है ना, ज्ञानी जो होते हैं ना व्यवहारिक नहीं होते, व्यवहार करने वाला व्यक्ति फिर अनात्मा की तरफ ज्यादा ही उसका लगाव होगा। और जब आप व्यवहार से ऊपर उठने लगते हैं, परमार्थ में चलते हैं, तो लोग बोलते हैं कैसा स्वभाव है, किसी से ठीक से बात नहीं करते। हालांकि आज से आज शाम को, हाँ, गिरीश भाई जी तो इसे रोज बताते ही है, अपने भागवत ज्ञान तत्व, उसमें मुझे तो लगता है लंबा विषय तो होगा 6 दिनों के हिसाब से, लेकिन कोशिश करेंगे जो जो हम लोगों के लिए उपयोगी विषय है, किस प्रकार से व्यक्ति को आत्मदृष्टि पूर्वक सारे प्रतिकारों को झेलना चाहिए, ये यदि सीखना हो तो भागवत जरूर सुनिए। दिन रात हम लोगों को संघर्ष करना पड़ता है, जो बात नहीं सुननी है सुननी पड़ती है, जो बात नहीं करना चाहते करनी पड़ती है, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं, और ये सब कई बार विक्षेप के कारण बन जाते हैं। आत्मा जो है अव्यवहार्य है, व्यवहार करने के योग्य है ही नहीं। अव्यवहार्यम अग्राह्यम हेयो और हे उपादेय, हे का मतलब होता है त्यागने योग्य और उपादेय का मतलब होता है ग्रहण करने के योग्य। जो वस्तु अपने से भिन्न हो उसी में त्यागना और ग्रहण करना दोनों हो सकता है। आत्मा हम लोगों से अभिन्न है और अभिन्न आत्मा में त्यागना और ग्रहण करना हो नहीं सकता। हो गया ना, आत्मा अभिन्न है ना, हाँ, भिन्न मानना है आत्मा अभिन्न है तो जो अपने से भिन्न है। कई बार लोग बोलते हैं आपने वहां छोड़ दिया, तो सामने वाले बोलते हैं हमने पकड़ा कब था जो छोड़ दिया। जिसको पकड़ने का अभिमान होता है वही छोड़ने का भी अभिमान करता है। कोई बोलते हैं आपको निकाल दिया, बोले मैं वहां रहता कब था, निकालने का, निकालने वाले को भले ही भ्रम हो सकता है मैंने उसको निकाला, लेकिन रहने वाला यदि कभी ये न माने कि मैं यहां रहता हूं तो मुझे निकाला गया, इसका भी दुख उसको होगा क्या? पहले से निकला हुआ है। जैसे हम लोग यहां अभी हैं संसार में, तो हम ये यदि माने कि हमको यहीं रहना है तब तो होगा कि भगवान ने इसको निकाला। और यदि हम पहले से अपने मन को बना ले ऐसा कि एक न एक दिन निकलना है, तो जिस दिन निकाले जाएंगे बोले भाई ये तो मैं पहले से सोच रहा था, वो दिन आज आ गया। अब लोगों की दृष्टि में निकालना होगा, अपने दृष्टि में पहले से निकले हुए थे तो उसका प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। तो सामान्य व्यवहार में तो कहते निकल गया, निकाल दिया। यहां पर न निकलना है न निकालना है, अत्रैव समवलीयन्ते, यहीं पर वह लीन हो गया। तो अग्राह्यम के द्वारा हेय और उपादेय, त्यागने के योग्य और ग्रहण करने के योग्य अपने से भिन्न वस्तु जो हो ना, उसमें ये सब व्यवहार होता है। आत्मा इसके योग्य है नहीं, इसलिए अग्राह्यम के द्वारा निर्देश कर दिया। अलक्षणम, आत्मा का लक्षण क्या करेंगे, समझाने के लिए करते हैं सब जितने भी लक्षण, क्या वास्तव में इसका कोई लक्षण नहीं है। अचिंत्यम, चिंतन का विषय भी चित्त है तो करना हुआ, बाकी ये अचिंत्य है अपने आप में। जब संसार ही अचिंत्य है तो उसके बारे में फिर क्या सोच सकते हैं। अव्यपदेश्यम, अंगुली के द्वारा निर्देश करके नहीं बताया जा सकता कि यही आत्मा है। और एक आत्म प्रत्यय सारम, सबके अंदर एक ही आत्मा है, जब जब सबको प्रतीति होती है, आत्म प्रतीति में कोई भेद नहीं है, इसलिए वह एकात्म प्रत्यय सारम है। प्रपंच उपशमम, जब विक्षेप शक्ति के द्वारा सृष्टि में हलचल हुई, कैसे संसार प्रारंभ हुआ, खास करके जब ये सूत्रात्मा और हिरण्यगर्भ की बात आती है ना, तो सूत्रात्मा और हिरण्यगर्भ ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति प्रधान, क्रिया शक्ति प्रधान जो सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ है, और सबसे पहले अहंकार तन्मात्रा, दोनों जब एक साथ होते हैं तो ये उभयात्मक माने गए। तन्मात्रा और अहंकार, इसमें जड़ता भी है और चेतनता भी है, दोनों एक साथ होते हैं। फिर केवल अहंकार के तामस तन्मात्राओं से शब्द स्पर्श रूप रस गंध उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए संसार पूरा तामस माना गया, तमो में। और रजोगुण के द्वारा बाकी कर्मेंद्रियां उत्पन्न होती है, और फिर सात्विक अंश से अहंकार के द्वारा इंद्रियों के जो देवता वे सब प्रकट हो जाते हैं, पूरे विस्तार से पुराणों में भी आता है और वेदांतों में भी बता दिया है किस प्रकार से सबसे प्रबलता हम लोगों के अंदर है जिसकी, हुआ है अहंकार। अहंकार से ही हम लोग यहां जीवित हैं, और प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सबसे अलग किए हुए हुए हैं। हम यहां जितने बैठे हैं ना, जब अपने अहंकार को आप हटा देते हो तो एक अलग से आनंद की अनुभूति होती है, और जब हम अपने अहम को पकड़े रहते हैं तो कहीं न कहीं हमको सबसे अलग कर देता है। और ये न हो तो संसार चलेगा भी तो नहीं। घर में पिता को पिता का अभिमान न हो, पुत्र का अभिमान न हो, तो वहां कैसे व्यवहार होगा, असंभव है। आत्मदृष्टि से सब एक हैं, और उपाधि के दृष्टि से सब में भेद करना ही पड़ता है। तो प्रपंचोपशमम का उदाहरण आप समझ सकते हैं, जैसे कभी भंडारा होता है आपके यहां 8 दिसंबर को भागवत के बाद, तो ऊपर देखो हॉल में खूब हो हल्ला होता है, इधर बैठो इधर बैठो, उसका आसन इधर है, सब अपने अपने जगह देखते हैं। बैठने के बाद आप कहां हो, आप कहां से आए, आप क्या करते हो, ये सारी बातें होती है। व्यवस्थापक भाई ये सब चीजें यहां ला के रखो, पूरी रखो, सब्जी रखो, ये लाओ, सब इकट्ठा करो, परोसदारी कौन कौन करेगा, सारे खूब कोलाहल होता है। जब भोजन परोसदारी शुरू हुई, 15वां अध्याय का पाठ प्रारंभ हुआ तो थोड़ा अब सबके एक ही स्वर हो गए। पहले तो कोई ऊंचा कोई नीचा बोल रहा था, उसके बाद जब पाठ हो गया और नमः पार्वती शुरू किया उसके बाद सब लोग खाने में लग गए, थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। प्रपंचोपशमम शांतम, फिर धीरे धीरे जब थोड़ा खा लिया, अब तो गया ना पेट में, अब फिर बात थोड़ा शुरू करते हैं। अरे पूरी वाला आया नहीं, कहाँ आने दो, तब तो अच्छा आपका हो गया क्या, आपको क्या चाहिए। फिर कुछ कुछ जो है उसमें सुगबुगाहट शुरू हो जाती है। ये संसार ऐसा ही है, और संसार को क्या देखना, अपने अंदर ही देखना, अभी जागृत अवस्था में है ना, तो कैसा प्रपंच दिखाई दे रहा है, न्यूज देख रहे हैं, न्यूज पेपर पढ़ रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। आज गणपति जिसने एक दिन का रखा था, चलो भाई विसर्जन करना है, कोई आगे की तैयारी कर रहे हैं, कोई कहीं ड्यूटी पे जा रहा है, सब लोग अपने उसमें लगे हैं। ये जो कोलाहल है, सारे प्रपंचों का उपशमन रूपी जो स्थान है वह आत्मा है, इसलिए कह दिया प्रपंच उपशमम। उपशमन का मतलब है चीजें वही हैं लेकिन जो हलचल है वो बंद हो गई। शांतम इसलिए शांत है, ऐसे शिवरूप शिवम अद्वैतम चतुर्थम जो तुरीय रूप है उसको आत्मा कहते हैं, उसी को आत्मा जानना चाहिए। इति श्रुतिर श्रुति श्रुति ही भज्येत, मांडुक उपनिषद में जो आत्मा का स्वरूप बताया गया उस हिसाब से आत्मा में कार इतापन का तो सर्वथा निषेध किया गया है। यदि अकार इतृत्व जो आत्मा में अकर्तापना है, अकार इतापना करवाता भी नहीं है, इसको यदि उत्पन्न होने वाला मानेंगे कि आत्मा में अकार इतापन उत्पन्न होता है तो जो उत्पन्न होता है वह अनित्य होता है, और यदि आत्मा में आत्मा को अनित्य मानेंगे तो आगे फिर सब कुछ सब क्या होने लग जाएगा, नश्वर होने लग जाएगा। सुसुप्तौ अपि कार इतृत्वम दृश्येत, बोले यदि आत्मा में कारयिता मानते हो तो गहरी नींद में जाने के बाद भी आत्मा में कारयितृत्व दिखना चाहिए। लेकिन वहां दिखता है क्या, गहरी नींद में जाने के बाद तन्न दृश्यते, वहां ये दिखाई नहीं देता। तस्मात् आत्मनः कारयितृत्वम न स्वाभाविकम, आत्मा में जो कारयितापन है, जो आत्मा के द्वारा हम बोलते हैं कि मैं देवालय बनवाता हूं, मैं तालाब खुदवाता हूं या जो भी करवाता हूं, ये एकमात्र आगंतुक है, स्वाभाविक नहीं है। आगंतुक औपाधिक ये सब एक ही बात है, पर्यायवाची है, आरोपित भी कह सकते हो, आध्यासिक भी कह सकते हैं। तो आध्यासिक आरोपित औपाधिक और आगंतुक से पर्यायवाची हो गए। ननु जब जब ये ननु आता है ना, इसका मतलब शंका कर रहे हैं। कार इतृत्वात् अदर्शन मात्रेण आत्मनः कार इतृत्वम न अस्ति इति वक्तुम न शक्यते, सुषुप्ति में कार इतापन न दिखने के कारण आत्मा में कार इता नहीं है ये कहना ठीक नहीं, ये दृष्टांत ठीक नहीं है। क्यों, जैसा कि यथा उपाध्यायस्य अध्यापकत्वं विद्यमानमपि, कोई उपाध्याय बोलते थे पहले जो पढ़ाते थे उनका नहीं नाम होता था उपाध्याय, आजकल सरनेम भी होता है कईयों का, उपाध्याय ब्राह्मणों में लिखते हैं प्राय करके। तो उपाध्याय का जो अध्यापकत्व है, पढ़ाने का जो काम है, वह उसमें होने पर भी, पढ़ाने का जो काम है वो करता भी है, फिर भी शिष्य वर्ग असन्निधाने, पढ़ने वाले जब नहीं है सामने, पढ़ाने वाला तो है, उसमें पढ़ाने की क्षमता तो है, लेकिन पढ़ने वाला जब नहीं है कोई तो उसका पढ़ाना का पढ़ाने का जो काम है वो तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या मानेंगे कि ये अध्यापक नहीं है, फिर भी वह तो अध्यापक ही है। तदवत उसी प्रकार से सुषुप्तौ करण संयोगाभावात्, सुषुप्ति में जो आप कारिता का अभाव मानते हो वो तो करण के संयोगों का अभाव है। यदि करण का संयोग जैसे जागृत और स्वप्न में है तो वहां पर कारिता कर्तापन दिखता है, और सुषुप्ति में करण संयोग का अभाव है। कुछ भाषा थोड़ी कठिन तो लगती होगी, लेकिन आप लोग बार बार सुनते हो तो आसान लगता होगा, और नहीं लगे तो कोई बात नहीं, नींद में चले जाओ थोड़ी देर के लिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। समाधि, तो तद्वत् सुषुप्तो करण संयोगाभावाद् विद्यमानम् अपि कारयितृत्वम् न दृश्यते। कहते सुषुप्ति में भी कारयिता है, लेकिन करण का संयोग न होने से, करण का संयोग मतलब इंद्रियों के साथ कोई संपर्क न होने से वहां कारयितापन का भान हमें नहीं होता। वास्तव में वहां पर मानना तो पड़ेगा ही। उदाहरण दिया, जैसे शिष्य वर्ग नहीं है तो इतने मात्र से वह अध्यापक नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता। जागृत स्वप्नयो हो करण संयोगस्य सत्वा दृश्यते इति वक्तुं शक्यत्वादि चेत्। जैसे जागृत और स्वप्न में करण के संयोग होने से आत्मा में कारयिता मानना चाहिए, उसी प्रकार से सुषुप्ति में करण संयोग का अभाव है इसलिए वहां कारयिता नहीं है। तो आपने जो सुषुप्ति का दृष्टांत दे करके आत्मा में अकारयितापन को सिद्ध किया, ये दृष्टांत ठीक नहीं है। कहते भाई जब ऐसी बात है, तुम कहते हो करण के संयोग का अभाव होने से कारयितापन नहीं है, ये कहना ठीक नहीं, तो हम तुम्हें बताते हैं। तरही, तरही का मतलब होता है तब तो। जागृति उदासीन तुषणीम भावावस्थायाम, जागृत अवस्था में भी जैसे हम लोग अभी चुप बैठे हैं, कोई भी करण का संयोग है? हाँ, जागृति उदासीन तुषणीम भावावस्थायाम करण संयोगस्य विद्यमानत्वात् कारयितृत्वं दृश्यत। यहां पर करण के संयोग तो है ही जागृत स्वप्न में, तो इससे भी क्या होना चाहिए, आत्मा में कारयितापन दिखना चाहिए। लेकिन इस प्रत्येक करण का संयोग हो रहा है, लेकिन आत्मा के इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तन्न दृश्यते, करण के संयोग होने पर भी समाधि अवस्था में, मौन अवस्था में, जागृत अवस्था में होने पर भी आत्मा में कारयितापन नहीं दिखाई देता। तस्मात् आगंतुकम् एव इति वक्तव्यम्। आत्मा में जो कारयिता है वह आगंतुक ही है, आरोपित ही है, औपाधिक है, वास्तविक नहीं है। इसके लिए अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि किस प्रकार से आत्मा में कर्तापन कारयितापन का आरोप होता है। यथा अन्योन्याध्यासात्, एक तो ब्रह्मसूत्र के भाष्य में शुरू में आप लोग पढ़े हो, अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम् इतरेतरा अध्यस्यते, आपस में जो एक दूसरे का अध्यास होता है, अहम इति मम इति नैसर्गिकोयम् लोकव्यवहारः, अहम इति यह मैं हूं, यह मेरा है, यह तेरा है, जो कुछ भी व्यवहार होता है आत्मा और अनात्मा के अध्यास हो जाने के कारण, उसी प्रकार से आत्मा में कर्तापन कारयितापन का जो भान हो रहा है वह अध्यास के कारण है। कैसे? यथा अन्योन्याध्यासात्, अयोनिष्ठ लोहे में रहने वाला, दीर्घत्व हरस्वत्व, लोहा लंबा है लोहा छोटा है, इसलिए लोहा लंबा लोहा छोटा होने के कारण अग्नि के संपर्क होने से अग्नि के लिए बोलते आग लंबी है आग छोटी है। है तो लोहा लंबा लोहा छोटा, लेकिन बोलते क्या है, आग लंबी है आग छोटी है। उसी प्रकार से इस लोहे ने हमें जला दिया। लोहा भला क्या जलाएगा, लोहे में अग्नि का जो अपना गुण धर्म है वह लोहे में आने के कारण लोहा जलाता है, ये व्यवहार हो रहा है। लोहा क्या धर्म अग्नि में आया तो अग्नि लंबी है छोटी है, और अग्नि का धर्म लोहे में आया तो लोहा जला रहा है, ऐसा बोला जाता है। हरस्वत्व दीर्घत्व हरस्वत्वादयो अग्नौ अग्नि निष्ठ उष्णत्व प्रकाशादयो अयसी च भांति। अयह अयसी बोलते लोहे को, लोहे में अग्नि का धर्म और अग्नि में लोहे का धर्म आरोपित होने के कारण जैसे वहां पर दोनों ही बात गलत बोली जाती है कि लोहा हमें जला रहा है अथवा अग्नि लंबी है छोटी है, ये परस्पर धर्मों के अध्यास होने के कारण जैसे भ्रम से बोला जाता है, ठीक उसी प्रकार से तद्वद अज्ञानाद एव अज्ञान के कारण हम लोग, अज्ञान मतलब भ्रम अध्यास के कारण, राग द्वेष आदि निष्ठ कारयितृत्वम, पीछे आप लोगों ने सुना था ना, यत्र यत्र राग द्वेष तत्र तत्र प्रवृत्ति ही, यत्र यत्र न राग द्वेष तत्र तत्र न प्रवृत्ति, हाँ निवृत्ति कह सकते हो, जहां जहां राग द्वेष है वहां वहां प्रवृत्ति है, जहां जहां राग द्वेष नहीं है वहां वहां प्रवृत्ति नहीं है अर्थात निवृत्ति है। तो जो मूल बात लघु वासुदेव मरणम के उन्हीं बातों को बताने के लिए आचार्य इतने विस्तार से बता रहे हैं कि संसार में हम सब जितने भी लोग हैं सबके अंदर एक आणव मल अणु परमाणु के रूप में जो मल है जन्म जन्मांतर के, जिसके वजह से सब के सब हम पीड़ित हैं और बार बार भगवान से प्रार्थना करते हैं मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन। ये जो कर्म बंधनों से जो हम पीड़ित हो रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो पशुपति अष्टक है ना बहुत अच्छा है, इसको पढ़ो उसमें आता है ये सब, प्रलय दग्ध सुरासुर मानवम भजतरे मनुजा गिरिजापतिम, जरण जन्म मरण जन्म जरा भय पीड़ितम, प्रलय दग्ध सुरासुर मानवम भजतरे मनुजा गिरिजापतिम, मरण जन्म जरा भय पीड़ितम, इस पीड़ा से कोई बच नहीं सकता, एक न एक दिन इसका सामना तो करना ही होगा। मुझे अभी इनको देखा ना तिजोरी वाला को, पिछले साल मई में जब मैं आया था कथा करने, तो इनके शायद आपके कुछ हर्निया किसी का ऑपरेशन होना था, तब बोले कि अब मैं जा रहा हूं हॉस्पिटल में, अब जैसा प्रारब्ध होगा, अब देखो अभी यहां बैठे हैं ठीक ठाक, अगले महीने सेंचुरी मारने वाले। आपके सामने कोई कष्ट आए और उस कष्ट को बड़े आनंद के साथ वर्णन करो कि मैं अब हॉस्पिटल जाने वाला हूं, मेरा ऑपरेशन होने वाला है, जो सुनते हैं उनको इतनी प्रतीति नहीं होती है, लेकिन जिसके साथ होना होता है ना उसको लगता है क्या होगा क्या नहीं होगा। वेदांत श्रवण किया, ज्ञान पचा हुआ है, तो यही सोच के चलना है कि जो थसे हारो थसे, जो होगा सो अच्छा ही होगा, बच गए तो ठीक, चले गए तो ठीक। जब हम सोने जाते हैं रात में तो ये थोड़े सोच के सोते हैं कि सवेरे उठेंगे या नहीं उठेंगे, जो होगा देखी जाए, कई बार नहीं भी उठते हैं कई लोग, ऐसा होता है। अब इस डर के मारे तो कोई सोएगा नहीं ना, अस्पताल में जा रहे हैं, थिएटर में, मुंह में डॉक्टर लोग पट्टी बांधे हुए हैं, बड़े बड़े औजार लेके खड़े हैं, ये सब शरीर की पीड़ा है। कितने भी आत्मा असंग है निर्लिप्त है बोलते हैं, उस समय शरीराध्यास कितना है मालूम पड़ता है। हम लोग तो अभी जरा से ठंडी गर्मी में तिल मिला जाते हैं, और वहां जब चलता है हथियार, गणपति पूजन चल रहा है आजकल, गणेश जी दस दिनों तक। व्यास जी ने 100,000 श्लोक वाले महाभारत की रचना की ना, शायद 10 दिन में पूरे हुए थे। अनंत चतुर्दशी के दिन ही, अनंत चतुर्थी के दिन शुरू किया लिखना और 10 दिनों में महाभारत ग्रंथ पूरा हुआ। गणेश जी हो गए लिखने वाले, व्यास जी बोलने वाले। गणेश जी भगवान शंकर के अंश और व्यास जी स्वयं केशव, केशवम बादरायणम, दोनों का बड़ा अच्छा संयोग। जो व्यास गुफा माणा गांव, सरस्वती नदी वहीं लुप्त हुई, वहां इतने तेज आवाजें देखना आप, तो जब व्यास जी बोलते थे गणेश जी को सुनाई नहीं दे रहा था, और शर्त लगी थी कि जब तक आप बोलते रहेंगे तब तक लिखेंगे। व्यास जी को लगा कि कहीं गणेश जी बीच में चिढ़ न जाए कि सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या लिखूं। व्यास जी ने कहा ये सरस्वती ज्यादा हल्ला करे, जा तू। तो उसी श्राप के कारण सरस्वती वहां लुप्त हो गई और सीधे इलाहाबाद में आकर के आजकल सत्संग के रूप में सरस्वती का दर्शन होता है, बाकी सरस्वती दिखाई नहीं देती, वहां भी कोई नहा नहीं सकता। जब जा रहे थे पांडव लोग तो द्रौपदी को डर लगा कैसे सरस्वती को पार करूं, तो भीम ने एक पत्थर की चट्टान रख दिया, इसे उसका नाम पड़ा भीमपुल, माणा गांव के आगे हो भीमपुल। गणेश जी को बीच में भूख न लगे, प्यास न लगे, शरीर में ताप न बढ़े, इतनी ठंडी जगह फिर भी गर्माहट आ सकती है, इसलिए उनके शरीर पर व्यास जी ने मिट्टी का लेप लगा दिया और तभी से ये पार्थिव गणेश बनाने की प्रथा बनी। उसके बाद भी गणेश जी को जब ज्यादा ताप आया होगा, लिखते लिखते शरीर से मिट्टी झड़ने लगी सूख करके, व्यास जी ने देखा ये क्या है। उसके बाद जब 10 दिन के बाद महाभारत लिख लिया, तब गणेश जी को बहुत सारी चीजें खिलाए। व्यास जी बोले लो खाओ, उसके बदले में हम लोग आज मोदक खिलाते हैं और वो प्रसाद हम लोग पाते हैं। तो ये सब जो पौराणिक कथाएं हैं ना, इसका मतलब कुछ न कुछ तो है ही। अब ऐसे गणेश जी विघ्न करता विघ्न हरता है, कल आप लोगों ने सुना था रिद्धि सिद्धि ये सबको चाहिए। गणेश जी बुद्धि के प्रतीक है, पंचदेव की उपासना जब हम करते हैं तो एक बहुत सुंदर श्लोक है, बुद्धिर गणेशो मम चक्षु अर्क शिवो ममात्मा मम शक्तिराद्या विभेद बुद्ध्या मै ये भजंती मामंगहीनम कलयंती मूढ़ा। जो लोग इन पंचदेवों की उपासना में भेद बुद्धि करते हैं वह मूढ़ लोग हैं, ऐसे अज्ञानियों के लिए भगवान ने नामदेव भगवान के परम उपासक बहुत प्रेम करते थे, लेकिन वही वाली बात हो गई ना, दिल्ली से एक ट्रेन चलती है जगन्नाथपुरी के लिए नीलांचल एक्सप्रेस, और वो बनारस होके जाती है। अब दो यात्री आपस में बात कर रहे हैं, आप कहां जा रहे हो, बोले हम विश्वनाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं, और आप कहां जा रहे हो, बोले हम जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं। वृंदावन में नटवर नागर हैं तो चिदंबरम में नटराज भगवान विराजमान है, एक नटवर है तो दूसरे नटराज है, एक विश्वनाथ है तो दूसरे जगन्नाथ है, भेद क्या हुआ, एक हरि है तो दूसरे हर है। तो नामदेव भगवान हरि की पूजा करते थे बड़े प्रेम से, तो भगवान विष्णु ने सोचा कि विष्णु के उपासक वैष्णव होता है, और असली वैष्णव वह है जो व्यापक रूप से परमात्मा को जाने। अभी ये मुझे मानता तो है लेकिन इसके बुद्धि में मेरे बारे में सीमित पना है, इसको अपनी असीमता का उपदेश दूं। उसके लिए भगवान शंकर को साथ में लेकर जब प्रकट हुए नामदेव को अभेद ज्ञान कराने के लिए कि हरि और हर ये सब अलग अलग नहीं है, तो नामदेव ने सोचा देखो जिसको मैं नहीं मानता वो भी अपने मनवाने के लिए मेरे भगवान के साथ आया, मैं अब देखता हूं। तो भगवान विष्णु शिव जी को कितना मानते हैं, खट्वांगी विष्णु बल्लभ, हाँ विष्णु बल्लभो यस्य, भगवान विष्णु हैं बल्लभ जिनके प्रिय। भगवान शंकर को प्रिय कौन है? विष्णु। इसलिए शिव जी का नाम पड़ गया विष्णु बल्लभ। अब विष्णु बल्लभा जब करेंगे तो लक्ष्मी जी का नाम हो जाएगा। तो मैं अपने नाम की व्याख्या कर रहा हूं, विष्णु बल्लभ और आनंद, तब बनता है विष्णु बल्लभानंद। और ऐसे केवल विष्णु बल्लभा बोलेंगे तो लक्ष्मी जी का नाम होगा, और विष्णु बल्लभा जब बोलते हैं तो शंकर जी का नाम होता है। तो रामेश्वरम जैसा है, रामो ईश्वरो यस्य, रामेश्वर, रामश्चासो ईश्वर, राम ही है ईश्वर, ये भी अर्थ होता है। अथवा रामश्च ईश्वरश्च, राम जो मनुष्य रूप में आए थे ईश्वर ही थे, अलग नहीं थे वो। तो बहुत सारे अर्थ वहां रामेश्वर के लिए भी करते हैं व्याकरण के हिसाब से। तो ऐसे भगवान विष्णु वैष्णवानाम यथाशंभु, भागवत के 12वें स्कंध में कहीं आया है कि जैसे तीर्थों में काशी, नदियों में गंगा, वैसे ही वैष्णवों में भगवान शंकर सबसे अग्रगण्य है। भगवान शंकर से बढ़कर के कोई वैष्णव नहीं हो सकता, और इसलिए शिव जी का नाम विष्णु का भी नाम हो गया। सर्व सर्व शिवस्थाणु और भूतादिर निद्रव्य, विष्णु सहस्त्र नाम में विष्णु का नाम शिव क्यों बताया? इसलिए कि लोग ये न समझे कि ये शिव जी का ही नाम केवल शिव है, बल्कि विष्णु का नाम भी शिव है। अब कुछ लोगों का अनुभव है जो बताते हैं, कट्टर वैष्णव जो होते हैं और उनको पता लग जाए कि ये शिव जी को मानने वाले हैं। कौन बता रहे थे अपना अनुभव कि उनको जब चाबी भी हाथ में देते तो हाथ नहीं छूते, बोले ये शिव जी को मानने वाले हैं। तो इसका मतलब हुआ उनका जो ज्ञान है सीमित है, और आप यदि परम वैष्णव हो तो व्यापक है परमात्मा, ये ज्ञान होना चाहिए। शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है, इस बात को बताने के लिए भगवान विष्णु को हरि और हर के रूप में नामदेव के सामने प्रकट होना पड़ा। विष्णु ने कहा आप हमारे लिए आदरणीय है, शंकर जी बोले आप हमारे लिए आदरणीय है, बोले नहीं नहीं अभी नामदेव को समझाना है ना, इसलिए आप मेरा जो है ना आग्रह स्वीकार करो। तो भगवान विष्णु हो गए बाईं तरफ, अपने से बड़ों को रखा जाता है दाईं तरफ। तो हरिहर मूर्ति में आप नोट करना कि जिधर गौर वर्ण है वो शंकर जी का हिस्सा है, और श्याम वर्ण जो है वो विष्णु का हिस्सा है। तो हरिहर में श्याम और गौर वर्ण दोनों दिखाई देते हैं। दाईं तरफ जटा है तो बाईं तरफ मुकुट है, दाईं तरफ त्रिशूल है तो बाईं तरफ चक्र है, एक तरफ बिच्छू मकराकृत कुंडल है तो दूसरे तरफ सर्पों का हार है। ये हरिहर मूर्ति में जो जो था, आधे के आधे में विष्णु का हिस्सा और आधे में, तो अर्धनारीश्वर में जैसे पार्वती और शिव हैं, वैसे हरिहर में हरि और हर दोनों हैं। जब पूजा कराने के लिए आए, नामदेव ने सोचा मेरे भगवान के साथ ये भी पूजा कराने के लिए आए, लेकिन मैं तो इनकी पूजा करूंगा नहीं। तो पादयो पाद्यम, चरण धुलाया तो बाईं तरफ धुला दिया, दाईं तरफ को छोड़ दिया। हस्तयोर अर्घ्यम, बाएं हाथ को धुलाया, दाहिने हाथ को छोड़ दिया। भगवान भी मुस्कुरा रहे थे, भगत तो मेरा पक्का है। ऐसे कट्टरवाद। जब सब कुछ हो गया ठीक ठीक, वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यो गंध उत्तमा आग्रे या सर्व देवानाम, जब हम लोग धूप दिखाते हैं तो जितने भी भगवान होंगे और तो और जो पूजा में बैठे हुए लोग होते, सबको अगरबत्ती की सुगंधी आती है, तो क्या कहेंगे कोई भी सुगंधी मत लो, नाक बंद करो अपने अपने। अब ये तो हो नहीं सकता, तो हमारे ये श्वास जो चलते हैं ना, कभी इधर कभी उधर, तो उस समय इधर के तो श्वास बंद थी और इधर के श्वास ले रहे थे भगवान विष्णु। तो नामदेव जब अगरबत्ती देने लगे तो इधर को बंद कर दिया, बोले इस नाक में सुगंधि न जाए। तो भगवान बोले अरे नामदेव मेरा तो दम घुट रहा है, तुझे ये अगरबत्ती इसको बंद कर दिया तो मैं सांस लू कहां से, इस समय इधर से ही ले रहा था, इधर का मैंने बंद किया था। भगवान को तो ये बताना था कि दोनों नाक जैसे एक ही है। पेट में तो बच्चा एक क्षण के लिए भी आगे पीछे हो जाए, जुड़वा में भी तो बोलती है बड़ा है और ये छोटा है। शरीर में कैसे कहोगे कि ये आंख बड़ी है ये आंख छोटी है? कोई भेद हो सकता है? दाहिना हाथ बड़ा है कि बायां हाथ बड़ा है? ये तो अभिन्न है ना, एक ही है। जैसे इसमें एकता का हमें अनुभव होता है, उसी प्रकार से हरि और हर दोनों एक समान है। नाक बंद करके नामदेव जो धूप दे रहे थे, भगवान बोले मेरा तो दम घुट रहा है और तुम्हारा जो आग्रह है, तुम भी बड़े पक्के हो भाई, लेकिन तुमने हमारा वो हाल कर दिया जैसे एक गुरु के दो चेले। गुरुजी के पास दो शिष्य थे। घर में भी होता है कई बार माता पिता को ना, जो जिस बच्चे का नाम अच्छा हो या बोलने में आसानी हो ना, वही नाम आ जाता है बार बार। अब जिसका नाम आएगा वो तो खुश होगा, जिसका नाम नहीं आएगा वो तो चिढ़ेगा कि इससे ज्यादा प्रेम करते हैं। तो कोई भी काम पड़े तो जिस चेला को बोलते थे अरे पुस्तक ले आना, पानी दे देना, दूसरा सोचता था हर काम में उसी को बोलते हैं, ये उनके लिए इतना प्यारा है। और मेरे साथ इस राग द्वेष की बात आ रही है ना, कैसे आदमी की प्रवृत्ति हो जाती है। देखो लघु वासुदेव मरणम की कथा तो आप सुन ही रहे हो, थोड़ा ये भी सुनाना पड़ता है ना, तो आप लोग सो जाते हो, तो ये सुनो थोड़ा। तो हुआ क्या, ना भगवान सुना रहे हैं कि गुरु के जो दो चेले, अब चेले ने सोचा कि ये हमको मानते नहीं, तो जिसको आवाज दे पानी लाओ तो दूसरा चेला गिलास छिपा दे, देखता हूं कैसे पानी पिलाता है। पुस्तक मंगवावे तो वो भी छिपा दे। गुरुजी को समझ में आ गई बात की इनके आपसी झगड़ा की वजह से हमें परेशानी हो रही है। तो दोनों को बुला के बैठा के समझाया कि तुम दोनों हमारे लिए ही काम करते हो, लेकिन तुम दोनों में जो समस्या है इसको दूर करने के लिए मैंने सोचा है कि हर काम बांट देते हैं, एक पानी पिलाएगा, एक पुस्तक लाएगा, एक ये कमरा साफ करेगा, दूसरा ये कमरा साफ करेगा, एक समय का भोजन ये बनाएगा तो दूसरे टाइम का भोजन तुम बनाओगे। बंटवारा करते करते उन्होंने अपने शरीर तक का भी बंटवारा कर दिया कि दाहिनी तरफ का तेरा, बाईं तरफ का तेरा। अब गुरुजी जो है बगीचा में काम करके आए हुए थे, थके तो थे ही, थकान के कारण यदि चित लेटते तो बराबर होता हिस्सा, वो लेट गए करवट लेके। तो करवट जब लिया तो स्वाभाविक एक पैर नीचे होगा एक ऊपर होगा। तो नीचे के पैर वाला आया और बोलता इसने मेरे पैर को दबाया, आज इसको छोड़ूंगा नहीं। अब बताओ गुरुजी का क्या हाल हुआ होगा। गुरुजी बोलते मूर्खों ये तेरे पैर नहीं उसके पैर नहीं, हमारे पैर हैं, ये तो हमने व्यवस्था बनाने के लिए बंटवारा किया था भाई, तुम दोनों तो डंडा चलाने लगे, चोट तो हमें लगेगी। विभेद बुद्धिया मई ये भजंती, पहले तो सब नाम गिना दिया, बुद्धिर गणेशो, भगवान गणेश जो है बुद्धि के प्रतीक है। जब विराट परमेश्वर की उपासना करेंगे ना, पंचदेव की उपासना की जो पद्धति शंकराचार्य जी ने बनाई, तो पंचदेव की उपासना से परमेश्वर के सांगो पांग उपासना हो जाती है। इसलिए गणपति शक्ति वैष्णव शैव और सौर्य, सूर्य को मानने वाले सौर बोलते हैं, ये पंचदेव उपासना की पद्धति है हमारे यहां। तो भगवान बोलते हैं बुद्धिर गणेशो मम चक्षु अर्क, जो मेरे नेत्र है वो भगवान सूर्य है, और समष्टि रूप में भी देखा जाए सभी नेत्रों के स्वामी कौन है, सूर्य ही है, उन्हीं के अनुग्रह से हम लोग रूप आदि का दर्शन कर पाते हैं। मम शक्ति राद्या, शक्ति आदि शक्ति जो है भगवती वो मेरी ही शक्ति है। पराश शक्तिर विविधै श्रूयते, वो जो पराशक्ति है पराम्बा जो अनेक रूपों में हो जाती है, और वही फिर जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी आदि अनेक नामों से अभिहित होती है, कहलाती है। शिवो ममात्मा, और शिव जी तो मेरी आत्मा है, आत्मा को कोई अपने से अलग कर सकता है क्या? बोले नामदेव जो तुम्हारे अंदर भी ये भेद बुद्धि बैठी है उन दो शिष्यों की तरह गुरु का शरीर तो एक ही था, लेकिन उन दोनों के अंदर इतना भेद बुद्धि दृढ़ हो गई थी जिससे वो दाएं पैर और बाएं पैर को अपने ही पैर मानने लगे। तो ये भ्रम हटा दो। यदि कोई विष्णु की पूजा करे, शिव जी की पूजा न करे, शक्ति की पूजा करे, विष्णु शिव की पूजा न करे, गणेश की पूजा करे, शिव शक्ति विष्णु और सूर्य की पूजा न करे, ये अपने आप में परमेश्वर के केवल एक अंग की ही पूजा मानी जाएगी। और एक अंग की पूजा करना मतलब खंडित पूजा होगी। मैं आपके हाथ को मानता हूं, पैर को नहीं मानता। मैं आपके बात को मानता हूं, मुंह को नहीं मानता वाली बात हो जाएगी। इसके लिए भगवान ने नामदेव को अभेद ज्ञान का उपदेश देने के लिए ही हरि और हर इन दोनों रूप को एक साथ लेकर प्रकट हुए। तब नामदेव को पता चला कि आज तक मेरे अंदर जो ये भेद बुद्धि थी, इसे भक्ति करते करते भी कहीं न कहीं जो भेद बुद्धि दृढ़ रहती है ना, तो विवेक चूड़ामणि ने इसलिए कह दिया ना कि मोक्ष साधन सामग्रियां भक्ति ही एव गरीयसी। मोक्ष के जितने भी साधन सामग्री है, मतलब साधनों का जो समूह है, उन साधनों में भक्ति ही एव, भक्ति ही श्रेष्ठ है। अब पूछेंगे भक्ति क्या है, तो स्वस्वरूपानुसंधानम, अपने स्वरूप का जो अनुसंधान करना है, लघु वासुदेव मननम के माध्यम से करें, ब्रह्म सूत्रों के माध्यम से कीजिए, वेदांत के अनेक ग्रंथों को पढ़ करके प्रतिदिन जो यहां हम बैठते हैं। सामान्यतः स्वाध्याय का अर्थ आप लोगों के दिमाग में क्या है? स्वाध्याय का अर्थ क्या करेंगे? शाब्दिक अर्थ होता है तो स्वयं का अध्ययन। और स्वयं का अध्ययन क्या करेंगे? तो एक जगह लिखा स्वाध्यायो जपह। स्वाध्याय का मतलब जप। ये जो रोज हम बैठते हैं ना, अपना ही जप करते हैं। जपु व्यक्तायाम वाची। जप किसको बोलते हैं? जब वाणी के द्वारा उसको व्यक्त किया जाए उसका नाम है जप। तो ये जो हम रोज बैठते हैं अपना अध्ययन करने के लिए, तो स्वाध्यायो अध्येतव्य कहा है ना कि स्वाध्याय के द्वारा हमेशा जो है मतलब अध्ययन करना चाहिए। स्वाध्यायान मा प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमदितव्यम, स्वाध्यायान मा प्रमद आचार्यवान पुरुषो वेद। रोज रोज हम जब बैठते हैं सुनते हैं, अभी आप लोग कुछ भी सुनते हो कितना आसान लगता है। अब एक दिन दो दिन सुनोगे, फिर एक महीने तक गायब कर दोगे, फिर नहीं सुनोगे, तो वो बात कभी पल्ले पड़ती नहीं है। तो स्वस्वरूप अनुसंधानम, अपने स्वरूप का अनुसंधान मतलब खोज करना रोज रोज। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, इतने साल निकाल दिए, इसका क्या मिला, दुनिया देख लिया क्या मिला, इतने सारी वस्तुओं का उपभोग किया क्या मिला, करते करते अवस्था आदि के दोषों के कारण विक्षेप आ सकता है, लेकिन जब आप इस पर दृढ़ रहेंगे तो एक न एक दिन भगवान की कृपा तो अवश्य होगी। भगवान भी तो पार लगाने वाले ना, बाकी कुछ हमारे अपने कर्म भी तो है, क्योंकि मनुष्य जन्म मिला है, पुण्य और पाप मिले हुए होने पर ही ये जन्म होता है। तो कभी कभी पाप कर्मों की प्रबलता होने से, मार्गों से भटकना, किसी व्यक्ति के द्वारा विक्षिप्त हो जाना, कभी बाघ युद्ध होना, कभी कहा सुनी हो जाना, ये सब होने पर भी इस आत्मज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जब दृढ़ हो जाएगा तो वही बात है, गुरु जी ने कहा चेले से, बेटा खाना कुछ भी, डकार तो हींग की ही निकालना। और ये आपको नहीं विश्वास हो तो मारवाड़ में देखो, भोजन के बाद क्या देते हैं? पापड़। और पापड़ खाने के बाद जितना भी माल खाया उसके डकार में गंध आएगी बाद में, पहले किसकी आती गंध? पापड़ की। कितने प्रबल है पापड़, जो खाया सबको दबा दिया। तो सुनो सब कुछ, करो सब कुछ, लेकिन वेदांत को पापड़ की तरह जो है ना, इसको ऐसा रखो कि जब भी डकार में आवे तो वेदांत की ही गंध आवे, हींग की गंध निकले। और इसलिए हम लोगों को चाहे भागवत की कथा करे रामायण की कथा करे कहीं न कहीं घुमा फिरा करके वहीं पे आ जाते, लोग भी समझ जाते हैं बाबा जी तो वही बात करेंगे। लेकिन ये हमारे काम की चीज है, राम ने जो किया उन्होंने किया, कृष्ण ने जो किया उन्होंने किया, अब हमें क्या करना है, अपने आत्म कल्याण की बात सोचो। तो ये आत्मा राग और द्वेष के द्वारा जो कर्ता और कार्यता पर है आत्मा में होता है, और राग द्वेष पूर्वक ही क्यों होता है, कैसे होता है, ये फिर विचार करेंगे कल। हरिओम।